गिनती अध्याय 27 में स्त्रियों की गिनती का आरंभ है। तब यूसुफ के पुत्र मनशे के वंश के कुलों में से सलोफाद जो हेपेर का पुत्र था। गिनती 27 अध्याय 1 पद। सलोफाद की 7 पुत्रियां थी और बेटा कोई नहीं था। जब भूमि का बंटवारा हुआ पुत्रों को भाग दिया गया था, जेठा पुत्र को भाग दिया जाता था। इसलिए इन पुत्रियों ने कहा, एक मिनट के लिए रुको, ये तो ठीक नहीं है। हमारा बराबर का हक है, हमारे पिता का कोई पुत्र नहीं है। यदि तुम हमें कुछ भाग ना दो तो हमारे पिता का नाम इसराइल से मिट जाएगा। इसलिए मूसा ने कहा, हम इस बात को परमेश्वर के सन्मुख ले जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, ये स्त्रियां ठीक कहती हैं, उन्हें उनके परिवार की विरासत दो। वे अपना हक जीत गई और उन्हें सलोफाद की विरासत मिल गई। देखो लड़कियों, परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हारा कारण सही था, परंतु दुर्भाग्यवश ये बदलने वाली स्त्रियां परमेश्वर से दूर हो गई। उनका अधिकार तो था, परंतु फिर ऐसा हुआ कि वे दूर, बहुत दूर हो गई। इसलिए उसने विरासत का नियम दिया, यदि कोई पुत्र ना हो तब वो पुत्रियों को मिले, यदि पुत्रियां ना हो ना पुत्र हो तो विरासत पुरुष के भाइयों को दी जाए, यदि उसका कोई भाई ना हो तब तो वो पुरुष के पिता के भाई को मिले, और यदि चाचा ना हो तब वो निकट संबंधी को मिले, जो भी उसके सबसे निकट परिवार में हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञाओं को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में है। गिनती 27 12 से 14 पद। अब मूसा तू पहाड़ पर चढ़ जा और प्रतिज्ञा के देश को अच्छे से देख ले, क्यों तो इस देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसका कारण तो तू ही जानता है। मरीबा जिसका अर्थ है तलह की पानी, वहां तूने मेरी प्रजा के सामने मेरी छवि बिगाड़ दी थी, तेरा अंत समय निकट आ गया है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है वो इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। गिनती 27 15 और 16 पद। ये पद छोटा तो है परंतु बड़ा रोचक है। यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, इस पद से मोरमोन लोगों ने प्राणियों की आत्मा के बारे में अपनी ही विकृत शिक्षा का विकास किया। उनका कहना है कि आप वास्तव में स्वर्ग के निवासी थे, आपकी आत्मा आदि से ही स्वर्ग में थी, परमेश्वर ने आपके लिए एक शरीर बनाया और आपकी आत्मा को उस शरीर में डाल दिया। वो ये देखना चाहते हैं कि आप मोरमोन समुदाय की सदस्यता में आ जाने के कारण ईश्वर बन जाते हैं या नहीं। अब आप ये सोचेंगे कि आपको अपने अतीत का अर्थात स्वर्ग के निवास का कुछ भी याद नहीं। परमेश्वर वास्तव में देखना चाहता था कि आप भले हैं या बुरे हैं, इसलिए उसने आपकी आत्मा को इस शरीर में डालकर आपको नीचे भेज दिया। अब यदि आप अच्छे मोरमोन हैं तो आप अच्छा आवश्य पहनेंगे जिससे कि आप ईश्वर बन जाएं। अब आप और आपकी पत्नियां किसी ग्रह पर जाकर अपना राज्य स्थापित करेंगी कि उसे इच्छा के अनुसार विकसित करें। इस तरह ये झूठी शिक्षा इस छोटे पद पर आधारित की गई है। मैं वास्तव में इस पद को ऐसा नहीं देखता। यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, परंतु ये किसी भी चीज से पहले परमेश्वर के साथ स्वर्ग में आत्माओं के अस्तित्व की बात नहीं कहता है। वो सब आत्माओं का परमेश्वर है। वो इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो इसके सामने आया जाया करे और उनका निकलने और पैठाने वाले हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इसराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे और वो एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उर्रिम की आज्ञा पूछा करे और वो इसराइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। गिनती 27:16-21 पद। उर्रिम एक छोटी सी चीज थी जिसे याजक रखते थे, जो एक छोटी थैली की तरह थी। इससे वे परमेश्वर की इच्छा जानते थे उर्रिम और तुमिम के द्वारा। उर्रिम और तुमिम का अर्थ है ज्योति और सिद्धता। कुछ लोग मानते हैं कि वो केवल एक छोटी तैली होती थी जिसके अंदर एक सफेद और एक काला पत्थर होता था। जब वे परमेश्वर से सवाल पूछते थे, वे कहते थे, अब प्रभु हमें दिखा कौन सा है, और वो याजक एक पत्थर निकालता था। यदि वो सफेद पत्थर होता तो समझा जाता था कि परमेश्वर का उत्तर हां में है। तब वो दूसरा सवाल करता था। वे पत्थरों को फिर से थैली में डाल देते थे, फिर वो एक पत्थर निकालते थे और इस प्रकार परमेश्वर के हां नहीं का उत्तर पाते थे। अतः परमेश्वर से किसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे इन दो वस्तुओं का उपयोग करते थे। मूसा से तो परमेश्वर आमने सामने बातें करता था, इसलिए उसे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर ने कहा, मूसा की तरह ना कोई था और ना होगा जिसके साथ वास्तव में मैंने आमने सामने बातें की है। ये बात करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका था। यहोशू को अब लोगों की अगुवाई करनी थी, इसलिए उसे याजक एलियाजर के पास आकर परमेश्वर की इच्छा को जानना आवश्यक था। उदाहरण के लिए, क्या हम इन लोगों के साथ युद्ध करें? तब दूसरा सवाल, दिन में किस समय हमें युद्ध आरंभ करना चाहिए? इस प्रकार वे परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए याजक से प्रश्न पूछते थे। याजक उर्रिम और तुमिम का प्रयोग द्वारा, अर्थात ज्योति और सिद्धता के द्वारा परमेश्वर की इच्छा जानकर उन्हें निर्णय सुनाता था। अब ये उर्रिम और तुमिम क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका अनुमान लगाना लोगों की कल्पना ही है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसी कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। गिनती 27:22-23 पद। मूसा ने उस पर हाथ रखे और प्रमाणित किया कि यहोशू अब मूसा का स्थान लेगा और इसराइल की प्रजा की अगुवाई करेगा।